नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी के टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। टोक्यो में जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का और भारत प्रतिभा का पावर हाउस है।
जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के बाद भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के सबसे भरोसेमंद बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण और ऑटो क्षेत्र में भारत जापान सहयोग अत्यधिक सफल रहा है। उन्होंने मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय योगदान के अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को महत्व देते हुए संतुलित और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में आज राजभवन में नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गोलाघाट में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ब्रिटिश शासनकाल की भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके 3 नए कानून लेकर आई। नई दिल्ली रवाना होने से पहले श्री शाह आज असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोला बोरबोरा के जनशताब्दी से जुड़े साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ करेंगे। बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय मदद की पहली किस्त में चुनी गई प्रत्येक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए ₹10,000 दिए जाएंगे। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है।
मेजर ध्यानचंद को यूं ही हॉकी का जादूगर नहीं कहा जाता। उनके अद्भुत खेल प्रदर्शन से प्रभावित होकर जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने की पेशकश की, लेकिन दद्दा ने हमेशा मातृभूमि भारत के लिए ही अपने खेल कौशल को समर्पित किया। गेंद इस कदर उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि सभी को भ्रम होता था कि वे कोई जादुई स्टिक लेकर मैदान में तो नहीं उतरे, जिस पर से बॉल है कि छूटती ही नहीं। यहां तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया। जापान में भी उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। मेजर ध्यानचंद की गिनती दुनिया भर के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से होती है। उन्होंने अपने जीवन में 1,000 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में हॉकी स्पर्धाओं में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाली टीम में शामिल रहे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
पेरिस में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु BWF विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में आज इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी से मुकाबला करेंगी। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज ही सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया के आरुण चिया और सो वेइक की जोड़ी से होगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय मॉनसून से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं जम्मू और कश्मीर में भी जम्मू संभाग में रेल यातायात प्रभावित है। जम्मू से आने जाने वाली 40 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश में सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। जम्मू संभाग के सभी स्कूल भी कल तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।